ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन बाबा के बेहद घर में बारिश के दिनों में जब सूक्ष्म वतन का ही अनुभव करते हैं तो चैतन्य में फरिश्ते बनकर के सूक्ष्म वतन में निवास करते हैं, ऐसा अनुभव करते हो ना सभी। क्योंकि अहमदाबाद में तो गर्मी खूब और यहां एकदम बाहरी मौसम, सूक्ष्म वतन नीचे उतर आया है तो आप लोगों के आने से सूक्ष्म वतन भी नीचे आ गया। तो बाबा के साथ अव्यक्त मिलन करना कितना सहज हो जाता है। और आज जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे जिसके पास दुआओं का खाता है उसके पास माया आ नहीं सकती है। साथ ही बाबा ने कहा कि मर्सीफुल होना और क्षमा भावना, यही जैसे दुआएं देना भी है और दुआएं प्राप्त करना भी है। बाबा ने हमेशा हम बच्चों को तीन खाते जमा करने के लिए कहा है, क्योंकि ये तीनों खाते ब्राह्मण जीवन में तो क्या, लेकिन सारे कल्प में इसकी उपयोगिता कहो या इसकी आवश्यकता कहो बहुत है। पहला खाता जो बाबा ने जमा करने लिए कहा है वो है कि बच्चे स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा करो। दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करो। और तीसरा बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे किसी को भी सुख देने से दुआओं का खाता जमा होता है। तो ये तीनों खाते भरपूर चाहिए, प्रारब्ध का खाता, पुण्य का खाता और दुआओं का खाता। ये कहां हमें काम आता है? तो जैसे कहा जाता है कि बाबा जब संगम युग पर आते हैं और हम ब्राह्मणों से पुरुषार्थ जो कराते हैं तो हम खाली भविष्य किस जन्म का प्रारब्ध पाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हम पूरे 84 जन्म की कहानी अभी ही लिखते हैं, स्क्रिप्ट अभी ही बना देते हैं और उसी के आधार पर हमारा 84 जन्म, एक एक जन्म का जो प्राप्ति कहो, जो उपलब्धि कहो, वो यहां से तय होती है। तो जो स्वपुरुषार्थ है जिससे प्रारब्ध का खाता जमा होता है, तो स्वपुरुषार्थ में कौन सी बातें आती है? तो ब्राह्मण जीवन के लिए जो बाबा ने नियम मर्यादाएं दी है, जो श्रीमत दी है, उस श्रीमत से एक एक कदम जितना हम श्रीमत पर चलते जाते हैं यही हमारा पुरुषार्थ है। संगम युग का पुरुषार्थ क्या है? अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर कदम जितना हमारा श्रीमत पर चलना हुआ तो यही पुरुषार्थ है। अमृत वेले उठे, मुरली क्लास किया, फिर सारे दिन में कैसे कर्म योगी बन करके चले, तो ये हमारा स्व पुरुषार्थ है। उसी से प्रारब्ध जमा होता है, अर्थात सतयुग और त्रेता युग के एक एक जन्म किस क्वालिटी का होगा ये स्व पुरुषार्थ तय करते हैं। जितना स्वराज्य अधिकारी बन करके हम चलते हैं उतना वहां भी राज्य अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, उतना जन्म। और जितना अधीनता वाला जीवन रहा, कोई ना कोई कमी कमजोरी के अधीनता वाले रहे, इंद्रियों की अधीनता, उतना वहां भी अधीनता वाला जीवन रहेगा। जिसके लिए बाबा कहे कि नवाबों के आगे भरी ढोएंगे, जो बाबा कहते हैं हमेशा पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, नहीं तो भरी ढो, है ना। तो अधीनता वाले भरी ढोएंगे और जो स्वराज्य अधिकारी है वो राज्य अधिकार को प्राप्त करते हैं। या जिसको कहा बाबा ने कि शाहूकार प्रजा में जाएंगे, तो जितना ज्ञान रत्न इकट्ठा करते जाएंगे और उस ज्ञान रत्नों को बांटते जाएंगे, उतना शाहूकारी प्राप्त करेंगे, शाहूकारी जन्म प्राप्त करेंगे सतयुग त्रेता में भी। तो यहां के स्वपुरुषार्थ से ही भविष्य, इतने जन्म हमारे फाइनल हो जाते, 21 जन्म की बादशाही कहो या राजाई कहो, वो हमें प्राप्त होती है। दूसरा जो कहा, सेवा करके पुण्य का खाता। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं अंत तक स्वपुरुषार्थ और सेवा छोड़ना नहीं है। अंत तक स्वपुरुषार्थ भी करना है अंतिम घड़ी तक, और सेवा भी करते रहना है। ब्रह्मा बाबा जैसे उसका साक्षात एग्जाम्पल, मम्मा साक्षात एग्जाम्पल के अंतिम घड़ी तक भी सेवा किया। तो स्वपुरुषार्थ भी और सेवा भी। अच्छा, ये सेवा द्वारा जो पुण्य का खाता जमा किया वो कहां काम आएगा? तो द्वापर से लेकर कलयुग तक हमारे जो जन्म होंगे वो इसी आधार पर बनते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि सतयुग त्रेता का जो प्रारब्ध पूरा होता है, फिर जैसे द्वापर में आए तो दान पुण्य करते हैं, लेकिन जो जन्म वहां मिलेगा उसके लिए भी तो पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के तो वहां कैसे जन्म मिलेगा? तो इसीलिए वो पुण्य हमें एक क्वालिटी जन्म देंगे। उसका अगर मिसाल मैं आपको बताऊं कि आप ज्ञान में आए उसके पूर्व, ज्ञान में आने से पूर्व का जन्म देखो, तो फिर भी कलयुगी लोगों से अच्छा था। आप लास्ट जन्म देखो कलयुग का, ज्ञान में आने से पूर्व, तो भी हमारा जन्म कितना अच्छा था। चारित्रिक रूप से देखो अच्छा था। दुनिया के अंदर तो कितना चारित्रिक रूप से गिरे हुए लोग हैं, लेकिन हमारा लास्ट जन्म भी इतना अच्छा, तो कैसे? तो जो संगम में सेवा की है वो पुण्य जो है हर जन्म में उसका फल मिला है हमें, और अंतिम जन्म तक वो पुण्य चला है। वो संस्कार हमारे रहे हैं। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है, अभी मैं समझती 5-6 महीने पहले ही चली, कि जिसमें बाबा ने कहा कि ब्राह्मण लोग तन मन धन से जो बाबा के यज्ञ में सेवा करते हैं, तो क्योंकि ब्राह्मणों का धन लगा है तो द्वापर से लेकर कलयुग तक एक भी जन्म भिखारी का नहीं होगा। ये बाबा के महावाक्य है। जिसने अपना तन मन धन सफल किया है तो प्राप्ति देखो, तो खाली सतयुग त्रेता में प्राप्ति हो रही है ऐसा नहीं है, द्वापर कलयुग में भी हमारी मनसा सेवा के कारण हम लोगों का दिमाग भी अच्छा है ना, बौद्धिक शक्ति क्षमता भी अच्छी है, मन भी अच्छा है, भगवान को तो पहचान सके ऐसी बुद्धि है, चरित्र अच्छा है, तभी ज्ञान को सहजता से हम जीवन के अंदर धारण कर लिया। और आप सोचो, लास्ट जन्म की क्वालिटी भी इतनी अच्छी थी, कोई भिखारी नहीं थे हम, तो आप सोचो कि ये पुण्य का खाता कितना चलता है हमारा। जो इसीलिए बाबा कहते, एक का पदम गुना। लास्ट मुरली में भी बाबा ने एक्सप्लेन किया, अव्यक्त मुरली जो सुनी हमने संडे की, कि गरीबों का आठ आना 800 के बराबर। बाबा ने कितना इतना महत्व दिया कि ब्राह्मणों की पाई पाई, क्योंकि सच्चे दिल की कमाई है और सच्चे दिल से लगाते हैं, तो भले साधारण है अगर कलयुग में, फिर भी अगर साधारण जन्म मिला साधारण परिवार में तो भी बहुत अच्छा है दुनिया के हिसाब से, है ना? दुनिया के लोगों को तो देखो कैसा है। तो इसीलिए कहा, ये प्रैक्टिकल प्रूफ है कि जो सेवा द्वारा हमने तन मन धन समय श्वास शक्ति सफल किया, उसकी प्राप्ति जो है वो कलयुग अंत तक चलती है। और तीसरा खाता जो कहा, दुआओं का खाता, ये कहां काम आएगा? दुआओं का खाता किस लिए बाबा जमा करने के लिए कहते हैं, कहां काम आएगा? हाँ, विनाश के समय, अंतिम समय में। क्योंकि बाबा कहे कि अंतिम समय जब चारों ओर से पेपर एक साथ होंगे, उसमें अगर मक्खन से बाल की तरह बाहर निकलना हो तो दुआओं का खाता ही मदद करेगा। पहाड़ जैसी परिस्थिति आएंगी लेकिन वो आपकी स्थिति को छू नहीं सकेगी, उसका कारण है दुआएं जमा है। और दुआएं जमा करने का आधार क्या है? पुण्य कर्म से तो सुखदेव बनने से। जितना मैंने अनेक आत्माओं को सुख दिया है, मेरे कर्म ऐसे हैं जो मेरे कर्म से किसी को सुख मिला, तो उसके अंदर से जैसे निकलता है, किसी को आप कोई बात में सुख दो तो कहते हैं ना थैंक्स, ये थैंक्स हमारे लिए दुआ बन गई। जहां कहीं हमने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए कि जिस श्रेष्ठ कर्म से किसी आत्मा के अंदर से निकलता है, आपको बहुत बहुत थैंक्स, ये हमारे लिए ये थैंक्स नहीं है, ये दुआ है, है ना? शुक्रिया किया किसी ने। तो इसीलिए जब किसी को सुख दिया, जब किसी को हमने खुशी दी, उस समय हमें दुआएं जमा होती हमारे पास, हमारे खाते में। और इसीलिए आज जो बाबा ने कहा, उसके पास माया आ नहीं सकती है, क्योंकि माया ही तो पेपर लेती है लास्ट में भी। तो माया के पेपरों से बचना है तो दुआ का खाता भरपूर चाहिए, यानी इतने श्रेष्ठ कर्म चाहिए जो किसी के अंदर से आह नहीं निकलनी चाहिए। आ निकली, अगर मेरे कोई कर्म ऐसे हैं जो आ निकले किसी सामने वाले के अंदर से, ये बद्दुआ बन जाती है और वो बद्दुआ हमें बहुत तकलीफ देती है। और माया चारों ओर से हमारे ऊपर पूरा आक्रमण कर लेती है। इसीलिए बाबा कहे कि इतना सुख देने वाले कर्म करो, सुखदेव बन जाओ। दूसरा, दुआएं जमा करने का आधार जो बाबा ने मुरली में हमेशा बताया है हमें, कि बच्चे बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है। बैलेंस, बैलेंस से चलना आना चाहिए। अगर हम जीवन के अंदर कर्म और व्यवहार में व्यवहार और परमार्थ के बीच में बैलेंस नहीं रख सके, कर्म और योग के बीच में बैलेंस नहीं रख सके, तो परिवार वाले भी हमें क्या कहते हैं? जब देखो बस उसको वही सूझता है और कोई सूझता ही नहीं है। जैसे वो अरे भाई हम लोगों भी है इस संसार के अंदर, हमारे साथ भी उठो बैठो बात करो, कहते हैं ना, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। व्यवहार और परमार्थ के बीच में बैलेंस चाहिए, भौतिकता आध्यात्मिकता के बीच में बैलेंस चाहिए, स्वपुरुषार्थ सेवा के बीच में बैलेंस चाहिए, लौकिक और अलौकिक के बीच में बैलेंस चाहिए, है ना। ये सारे बैलेंस जितने बाबा ने बताए हैं, ये जितना हमारे जीवन में बैलेंस है उसी से हमें दुआएं प्राप्त होती है। खाली आत्माओं की दुआ मिले इतना नहीं, लेकिन परमात्मा दुआएं भी सहज मिल जाती है। और जिसके पास परमात्मा दुआएं हैं, बस उसका तो कहना ही क्या है, बेड़ा पार हो जाता है। उसके पास तो माया कभी सम्मुख फटकने का भी नाम नहीं लेंगी, है ना। परमात्मा रक्षा कवच जैसे हमारे पास हो जाता है, परमात्मा दुआ हमारे लिए रक्षा कवच हो जाता है। तीसरी बात, आप लोग अधिक चिंतन करना इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, तो उसको विस्तार करने जाएंगे तो टाइम की कमी हो जाएगी, आगे भी आपका क्लास है। तीसरी बात कि दुआएं किसको मिलती है, आज्ञाकारी बनकर चलने में दुआएं, जो बाबा की संडे की मुरली हमने सुनी, ऑनेस्टी, तीन मुरली जो लगातार बाबा की चली, पहली रियल्टी रॉयल्टी की, प्योरिटी, पहली मुरली प्योरिटी की, दूसरी रियल्टी रॉयल्टी पर, और तीसरी ऑनेस्टी पर, और आज्ञाकारी बनकर के चलने में, हाँ जी करने वाले जो है, जो सहजता से हाँ जी कर देता है, उसको दुआएं सबकी मिलती। इसीलिए बाबा कहते हैं हाँ जी करना माना आस्तिक, ना जी करना माना नास्तिक। जो इस रहस्य को समझ लेता है कि हाँ जी करने में मुझे दुआएं मिलने वाली है, वो जिंदगी में कभी ना जी नहीं करेगा, है ना। ना जी करना माना उसने इस रहस्य को समझा ही नहीं है कि इसमें क्या प्राप्ति है, तो इसीलिए वो कोई ना कोई नाजी भी कैसे करता है, बहाना बना करके। इसलिए बाबा कहते कई बार कई बच्चों को एक बाजी बहुत अच्छी खेलनी आती है, बहाना बाजी, ना करने का एक तरीका। तो बहाना बाजी करना ये भी तो ना करना हुआ ना। लेकिन जिसने हाजी की आज्ञाकारी बन करके चले, उसको सहजता से हरेक की दिल की दुआएं प्राप्त हो जाती है। चौथी बात, इसीलिए कहते हैं हाजी करना माना भाग्य के दरवाजे को हाजी खोलना। कहते हैं ना सिम सिम दरवाजा खुल जा, भाग्य का दरवाजा खोलना होता है। एक हाजी किया लेकिन उससे कितने भाग्य के दरवाजे खुलते हैं पता ही नहीं चलता है। और नाजी किया माना भाग्य के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर कहते हैं भाई मैं भी तो हूं, सारा चांस इसको मिलता है मेरे को नहीं मिलता, लेकिन वो हाजी कर रहे हैं ये आगे बढ़ रहे हैं, हमको तो आगे बढ़ने को नहीं मिल रहा। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? बंद कर दिया इसलिए। तो हाजी करने वाले हरेक को प्रिय लगते तो उसके दरवाजे खुलते जाते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। और नाजी करने वाले दरवाजा बंद करके बैठते, फिर शिकायत होती रहती है, फरियाद करते रहते हैं, बाबा को भी फरियाद करते रहते हैं, बाबा मेरा भाग्य का दरवाजा तो तुम खुलता ही नहीं है। बाबा ने विधि बताई, उस विधि को एडॉप्ट करो, फिर देखो कैसे दरवाजा नहीं खुलता है। चौथी बात, नहीं पांचवी बात ना, चौथी बात आवश्यकता के समय पर मददगार बनना। किसी को समय पर जरूरत है और उसी समय पर हम मददगार बने तो कितनी दिल की दुआएं उसके अंदर से निकलती है कि आज अगर आप नहीं होते ना तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। कहते हैं ना, ये कितनी बड़ी दुआएं बन जाती हैं। तो आवश्यकता के समय पर किसी के पास खड़ा हो जाना, मददगार बन जाना, देखो कैसे उसके अंदर से दिल की दुआएं निकलती है हमारे लिए और हर बार निकलती है। इसीलिए बाबा कहे कि समय पर जो साथ देता है, सहयोग देता है, उसका भाग्य भी उतना बड़ा होता है। दुआएं प्राप्त करने का ही आधार है। पांचवी बात, समय पर किसी कार्य के लिए निमित्त बनना, क्योंकि निमित्त बनने का भी भाग्य बहुत बड़ा है। कोई सेवा के निमित्त बन जाना, तो जो निमित्त बनता है ना उसको हमेशा दुआएं मिलती है। कितनी आत्माओं की दुआ मिल जाती है। तो एक तो आवश्यकता के समय पर सहयोगी बनना और दूसरा कोई विशेष कार्य के लिए निमित्त बनने का भाग्य बहुत बड़ा है। हमारी बड़ी दादी जी हमेशा इसलिए कहती, निमित्त भाव रखो। जो निमित्त बनता है उसको अपने आप हजारों की दुआ मिल जाती है, हजारों की दुआ मिल जाती है एक साथ में। तो इसीलिए किसी भी विशेष कार्य के लिए निमित्त बनना, क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए, निमित्त बनने के लिए हिम्मत चाहिए। और जो हिम्मत का पहला कदम बढ़ाता है तो भगवान की भी मदद तो मिलती है, लेकिन भगवान की भी दुआएं मिलती है। लेकिन जो डर जाता है, अरे भाई नहीं मेरा नाम आ जाएगा, ये मेरे से तो होगा नहीं, ये करके डर के पीछे हो गया, तो जो भगवान देना चाहता था कहां से देगा। तो इसीलिए कोई भी विशेष सेवा अगर आपके सामने आई तो वो इसीलिए आए कि भगवान भाग्य के दरवाजा खोलना चाहता है। लेकिन उस समय जो डर जाता कि ये तो मैं नहीं कर सकता हूं, तो जो आगे हिम्मत का कदम बढ़ा देते कि कोई बात नहीं, चलो जो होगा देखा जाएगा करके हिम्मत का कदम, तो दुआएं किसके खाते में गई, उसके खाते में गई। तो विशेष कार्य के लिए निमित्त बनना ये बहुत बड़ी दुआओं का खजाना प्राप्त करने का आधार है। छठी बात, समय पर कोई कार्य संपन्न करना, उसकी भी दुआएं बहुत है। कहीं होते हैं ना जैसे लेट 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 चलता रहता है तो लोग भी फिर तंग हो जाते हैं, क्या करते हैं ये लोग, और ही बद्दुआएं दे देते हैं। लेकिन अगर समय से पहले मैंने कोई कार्य संपन्न कर दिया तो सबकी वाह वाह निकलती है कि नहीं, और वो वाह वाह ही दुआएं हैं। तो समय पर कोई कार्य को संपन्न करना, तो संपन्न करने से भी हजारों की दुआएं प्राप्त हो जाती है ना। फिर और किसको दुआएं मिलती है, कोई राह भटके हुए को ठिकाना दे देना, कोई राह भटके हुए को ठिकाना दे देना। क्योंकि आज की दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि कितने लोग राह भटके हुए हैं। मोबाइल जब से आया कई लोगों का भटकना शुरू हो गया बुद्धि से, है ना। अब उन भटके हुए को ठिकाना दिखाना, कई यंगस्टर्स बिगड़ गए हैं, लेकिन बिगड़े हुए को सही रास्ता दिखाना। कल एक बहुत सुंदर कहानी मेरे सामने आई कि एक बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ था, पैसा ऐसा उड़ाता था क्योंकि उसको सहजता से मिलता था तो बहुत उड़ाता था पैसा, वेस्ट करता था। उसके पिता ने सोचा इसको रियलाइज तो कराना चाहिए, 10-10 रुपए के 10 कॉइन दिए, उसको 9 कॉइन दिए और कहा बेटे ये तालाब जो है ना कितना दूर तुम फेंक सकता है 10 का कॉइन। कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो फेंक सकता हूं दूर तक। और उसने एक एक कॉइन फेंकना चालू किया, जितना ज्यादा आगे जाता था ना अपने पिता को देखो कि कितना आगे डाला मैंने, 90 रुपया तो उसने डाल दिए। कहा आपने तो कहा 10 कॉइन है, नहीं तो 9 ही कॉइन है। कहा नहीं अभी 10वां कॉइन है ना, 10 रुपया तो खुद कमा के ले आ और डाल। तो बच्चा कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, 10 रुपया कमाना कोई मुश्किल है क्या। लेकिन जहां जाता था अमीर घर का बच्चा, उसको कौन नौकरी देगा। वो गया एक होटल में, मैं बर्तन साफ कर दूं आप मेरे को 10 रुपया दे दो बस। कहा नहीं भाई तेरे से काम करवाना, हमें कोई मुसीबत मोलना है कि जा 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 तू। जहां भी जाए मना कर दिए, कोई काम ही नहीं देवे। और उसने तो अपने बाप को प्रॉमिस कर दिया, अरे शाम तक मैं लेके आता हूं आपको 10 रुपया, कोई बड़ी बात है कट कमाना। अब कोई उसको देवे ही नहीं। फिर आखिर एक वेल्डिंग वाले के पास गया, लोहे का काम, खूब लोहा उसने कहा वहां से उठा कर ले आओ, ये वेल्डिंग करो मेरे साथ में, मदद करो, इसको मोड़ना है तो जोर लगाना पड़ेगा। सारा दिन धूप में और वो वेल्डिंग करता रहा, दिन के अंत में उसको 10 रुपया हाथ में मिला। आया अपने बाप को कहा लो 10 रुपया लेके आया। कहा जा अभी फेंक दो। बोले सवेरे 9 तुमने फेंक दिए ना, अभी ये 10वां तुम फेंक दो उस नदी तालाब में। बार बार देखे 10 रुपया माना कमाया कैसे हैं? वेल्डिंग का काम याद आया, वो पसीना जो छूटा उसको वो याद आया, कितनी मेहनत हाथ है उसके ये हो गए वो देख रहा था। फिर उसने अपने बाप को कहा ये नहीं फेंकूंगा, ये मेरी मेहनत की कमाई है। तो कहा वो 9 मेरी मेहनत की कमाई नहीं थी जो तुम फेंक दिया उसको। कहा आज मुझे महसूस हुआ कि हाँ मेहनत क्या होती है, अब आगे से जिंदगी में कभी कोई पैसा वेस्ट नहीं करूंगा। तो कोई भटके हुए को ठिकाने ले आना, और वो भी युक्ति से जो जिंदगी भर दुआएं दे, है ना। तो आज दुनिया के अंदर कितने ऐसे राह भटके हुए हैं, और ऐसे राह भटके को ठिकाने लाना, कई माताएं नहीं आती हमारा बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है उसको सुधारना है, उसको सुधारना है, उसको ये करना है वो करना है ना। और ऐसे बच्चे को अगर राह भटके हुए को ठिकाना मिल जाए तो कितनी दुआएं मिलती है बताओ, है कि नहीं। तो दुआएं प्राप्त करने का ये तरीका है। फिर सातवीं बात, जितना हमारे नेचर में सरलता और सहजता होगी, कॉम्प्लिकेटेडनेस ना हो। आज दुनिया के अंदर नेचर इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ है? पता ही नहीं चलता है, उलट पुलट करने वाले, यहां कुछ बोला वहां कुछ बोला वहां कुछ बोला, है ना। लेकिन जो बाबा के बच्चे सरल स्वभाव के, मन स्वच्छ है जिसका, सहजता है, जिसके अंदर सच्चाई है, उसको हमेशा दुआएं मिलती है और उसको परमात्मा दुआएं विशेष प्राप्त होती है। क्योंकि बाबा के बच्चा वो सुपात्र हो गया, वो भगवान का नाम बदनाम करने वाला नहीं लेकिन आबाद करने वाला, प्रत्यक्ष करने वाला कि हाँ ये भगवान के बच्चे हैं। तो जिसके नेचर में सरलता, सहजता, स्वच्छता, मन की स्वच्छता है और सत्यता, सच्चाई है, उसके ऊपर भगवान भी राजी हो जाता है, फिदा हो जाता है, उसको परमात्मा दुआएं भी सहजता से प्राप्त होती है। इसी का नाम तो ब्राह्मण है, नहीं तो ब्राह्मण किस बात के, है कि नहीं? अगर ये चीज ही नहीं है तो ब्राह्मण का है कि फिर? इसीलिए सत्यता सरलता ले आती है। लेकिन जितना मनुष्य झूठ बोलता है ना, उतना टेंशन ज्यादा हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेडनेस ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर बार उसको याद रखना पड़ता है कि पिछली बार कौन सा झूठ बोला था। कितना याद रखना पड़ता है कि पिछली बार ये बोला था, अगर इस बार ये बोला तो मुश्किल हो जाएगा। और हर बार कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग क्या समझेंगे, मेरे बारे में क्या इंप्रेशन लेंगे। इसलिए कितना टेंशन रखता है कि हर बार उसको याद रखना पड़ता है, एक बार भी अगर गफलत हुई तो गए फिर। उससे तो सच्चाई रखे ना, तो टेंशन ही नहीं। तो कोई जब कहता है ना कि हमें बहुत टेंशन है, तो मैं सोचती हूं जरूर कोई वो बोल नहीं पा रहा है लेकिन जरूर कुछ हेरा फेरी किया है, तो उसको टेंशन तो होगा ना। बाकी हमने हमारी दादियां देखो, कभी उनको टेंशन हुआ ही नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभालने के बाद भी क्यों नहीं हुआ? सत्यता सरलता, उनको कभी हेरा फेरी करनी नहीं पड़ी और आती भी नहीं थी, है ना? दादी को कई बार कोई लोग कहते थे ना, दादी आपको ये नहीं बोलने का ना, चुप रहो ना, क्यों बोल? अरे इसमें क्या हो गया ना, कितनी सच्चाई दादी के अंदर थी, सरलता। चाहे गुलजार दादी को देखो, बड़ी दादी को देखो, जानकी दादी, हर एक दादियों को देखो, कितनी सरलता उनके नेचर में थी। तो अपने आप सबकी दुआएं मिलती थी। लेकिन आज जितना दुनिया के अंदर कई लोग सोचते हैं हम स्मार्ट है, झूठ बोल करके उसको पता भी नहीं चला, इसको मालूम भी नहीं पड़ा। अरे भाई, लेकिन तुमने अपने लिए कितना टेंशन मोला। अब उसको समझदार कहेंगे या महाबेसमझ कहेंगे? मैं तो महाबेसमझ कहूंगी उसको। एक बार तुमने जो झूठ बोला उससे सामने वाले को पता नहीं चला, अब तुमको कितनी बार झूठ बोलना पड़ेगा और हर बार याद रखना पड़ेगा, तो उसको समझदार कहेंगे क्या? इससे तो सच्चाई से जिए ना, टेंशन ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, और इतना सरलता से, अरे जो है जैसा है बोल दो ना, क्या होगा? कोई यही कहेगा अरे भाई ये जो है बोल देंगे और अच्छी बात है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात हमें सुनाएंगे नहीं। कितना बच जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। अरे इसको कहा वो सुना देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो सुनाएंगे ही नहीं हमको, तो सेफ हो गए कि नहीं? इसीलिए बाबा कई बार कहते माताएं बड़ी भोली होती है ना, लेकिन भगवान को प्यारा कौन है? भोले का ही भगवान है। तो भोला माना जिसके अंदर सच्चाई, सफाई, स्वच्छता है, सरलता है और सहजता है, वही तो भगवान को प्यारा लगता है। तो स्वतः भगवान की दुआएं मिल जाती है। फिर आठवीं बात, दुआएं और किसको मिलती है? जिसने मैं की बलि चढ़ाई है उसको दुआएं सहज मिल जाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए, बड़ी दादी के लिए, इन्होंने जिंदगी में कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैं और मेरे शब्द का प्रयोग नहीं किया। बाबा को तो चलो नहीं देखा, लेकिन शिव बाबा ने मुरलियों में सुनाया है कि ब्रह्मा बाबा ने जब से बाबा का बना तब से लेकर के मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। शिव बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन बड़ी दादी जी को तो देखा हम सभी ने। बड़ी दादी जी ने भी कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। अगर दादी जी के मन में कोई विचार भी आता था तो भी दादी हमेशा ही कहती थी, दादी का ये विचार है, मैं से अलग कर देती थी, मेरा विचार है, ये दादी ने कभी नहीं बोला, दादी का ये विचार है ना। तो आप सोचो कि अपने आप जो दुआओं का पात्र बन गए, जिसके लिए भगवान ने भरी सभा में कहा 95% दादी जी पास है, पास विथ ऑनर्स है। तो जिसने मैं की बलि चढ़ा दी उसको दुआएं मिलती है। जो मैं करता रहता है तो वो दुआओं का पात्र होता है? नहीं होता है। खुद ही वाह वाह कर रहा है तो दूसरे कहते हैं अभी खुद कर रहा है ना, उसकी वाह वाह हम क्यों करें, अब खुद ही कर रहा है। तो खुद करने वाले को क्या दुआएं मिलेगी? इसलिए जहां मैं की बलि चढ़ा दी, यानी जो झुकता है, नम्र है, निर्माण है, उसको हमेशा दुआएं प्राप्त होती है। मैं करने वाले को कभी वो दुआओं के पात्र नहीं बनते। और लास्ट में कहूंगी, जो बड़ी दिल रखता है, बड़ी दिल रख करके कार्य करने वाले, बड़ी दिल से जो रहता है, भले उसके पास साधन सुविधा न भी हो तो भी हरेक को क्या करेगा, वेलकम वेलकम है। इतनी बड़ी दिल, तो बड़ी दिल में हर कोई समा जाता है और वो आत्माएं फिर उसको दुआ देती है। कईयों के पास बहुत बड़ा होने के बाद भी वो शेयर नहीं कर पाते हैं, बड़ी दिल नहीं है। तो बाबा हमेशा कहते हैं जो फ्राक दिल, बड़ी दिल वाले हैं, वो सबकी दुआओं के पात्र हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी दिल रख करके हरेक के दिल को जीत लेता है ना, हरेक के दिल को जीत लेता है, तो उसको सहजता से सब प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए कहा, जो बड़ी दिल रख करके सेवा करते हैं, बड़ी दिल रख करके सबको समा लेते हैं, बड़ी दिल रख करके जो सबको सहजता से वेलकम करते हैं, उसको अनेक आत्माओं की दुआएं सहज प्राप्त हो जाती है। तो ये है दुआएं प्राप्त करने के आधार। हरेक के पास कोई ना कोई विशेषता तो होती ही है, तो कितनी दुआएं जमा कर सकते हैं सोचो, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, कोई तो होगा ना जो हम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, एक चीज नहीं भी कर सकते हैं लेकिन उसमें दिल शिकस्त होने की जरूरत है, दूसरा ऑप्शन तो है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा, कोई तो है। तो वो ऑप्शंस को लेकर के आप अपनी बड़ी दिल से सेवा करके देखो, देखो कितना बाबा दुआएं देता है। परमात्मा दुआओं के अधिकारी, अनेक आत्माओं के दुआओं के, जो बाबा ने पिछली मुरली में कहा, तीन सर्टिफिकेट संतुष्टता के, नहीं पिछली मुरली ने, अभी आने वाली मुरली 31 तारीख की जो मुरली है उसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि तीनों सर्टिफिकेट हमने कहां तक प्राप्त किया है ये चेक करो। तो जिसके पास दुआओं का खाता है उसके पास ये तीनों सर्टिफिकेट सहज है, उसको तीनों सर्टिफिकेट सहज मिल जाता है। तो इसीलिए कहा ये तीन सर्टिफिकेट जिसके पास है, पास विद ऑनर है, पास विद ऑनर सहज हो जाता है। अच्छा, ये दुआएं जो कहां काम आती है, जो कहा अंतिम समय के अंतिम पेपर में पास होने के लिए काम आती है, ये दुआएं हमें भरपूरता का अनुभव कराती है, जैसे सभी खजानों से संपन्न अनुभव कराएंगी। फिर ये दुआएं ही लिफ्ट का काम करेगी। जिसके पास दुआएं हैं वो बैठते ही उसका योग सहज लग जाता है, उसको योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये दुआएं उसके लिए लिफ्ट का काम करती है। जो सहजता से बाबा के साथ का सानिध्य का अनुभव कर सकते हैं, अशरीरीपन की स्थिति को, फरिश्तापन की स्थिति को सहजता से अनुभव, क्योंकि लाइट है, इसलिए दुआएं चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कईयों को जैसे एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट हुआ तो भी उसको एक खरोच तक नहीं आई, और गाड़ी देखो तो एकदम खत्म हो गई, तो क्या कहते हैं? दुआओं ने बचाया है उसको, दुआओं ने बचाया है। मुझे याद आता है हम हैदराबाद गए थे, तो हैदराबाद में हम करीम नगर गए, प्रोग्राम था तो वहां करीम नगर गए। अब वहां पर फोन आया कि भाई सीएम मिलना चाहता है, लेकिन अभी का अभी आप पहुंच जाओ, अभी 2 घंटे का रास्ता है, अभी अभी कैसे पहुंच जाएंगे? तो हमने कहा भाई 2 घंटा लगेंगे हमको आने में, अभी भी निकले तो कहा कि थोड़ा जल्दी करना है ना। तो फिर वो ड्राइवर जो है वो कहता नहीं मैं पहुंचा दूंगा। अब कौन सी गाड़ी थी, तो ये मारुति जो डब्बा वैन, मारुति वैन है ना, तो वो गाड़ी थी। अब उसमें जो है ड्राइवर आगे प्रीतम बेन, पीछे मैं, कुलदीप बेन, एक कन्या, 5 जने हम। अब इतना फास्ट चलाए, 100-120 की, हम लोग बार बार उसको कहे कोई बात नहीं, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, तुम धीरे चला। वो हवा में उड़ती थी ऐसा लगता, नहीं नहीं बहन जी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में वो। हैदराबाद जैसे ही पहुंचने पर वो एक टर्निंग आता है वो कैंट एरिया में, तो टर्निंग आया तो वो टर्निंग में अपने आप को संभाल नहीं पाए, और संभाल नहीं पाया तो टर्निंग में ऐसा उसने मारा कट, तो वो डब्बा तो था उलट गया, 3-4-5 राउंड लगा के खड्डे में जाके गिरा। अब हम सब उस डब्बे में, धीरे धीरे जो है बाहर निकले, एक दूसरे को देखने लगे, ठीक है ना? देखा किसी को एक खरोच तक नहीं, खाली प्रीतम में आगे बैठी थी, उसको चश्मा खाली यहां लगा थोड़ा बस, बाकी किसी को भी 5 में से 1 को भी एक खरोच तक ना, डब्बा देखो तो पूरा ऐसा पिचक गया था एकदम, है ना। अब हम लोग बाहर निकल करके खड़े थे कि भाई कोई व्हीकल मिले तो जाए हम सेंटर पर। फोन लगाया किसी को, उस समय तो मोबाइल नहीं था, तो किसी को बोला कि भाई ये नंबर पर फोन करो, उनको कहो कोई दूसरी गाड़ी भेजे। तो कैंट एरिया था, मिलिट्री का एरिया था, तो किसी को ऐसा मैसेज दिया, तो फिर जो है जो वहां से आता था देखता था इसमें तो कोई नहीं बचा होगा, हम कहे हम सब खड़े हैं यहाँ पर, कहाँ ऐसी गाड़ी में कितने लोग थे, बोले 5 लोग थे, 5ों को कुछ नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं, अंदर मुड़माड़ लगा था थोड़ा, है ना। फिर भी हम लोग हॉस्पिटल जाकर चेकिंग करवाया कि भाई कहीं कोई किसी का हड्डी बड्डी टूटा तो नहीं, लेकिन सब इंटैक्ट है ना। बड़ी दादी को जब सुनाया उस समय, प्रकाशमणि दादी थे, जब सुनाया तो कहते हैं, और नीचे वो कन्या, उसके ऊपर कुलदीप बहन और उसके ऊपर मैं। बड़ी दादी इतना हंसी, बोली वो कन्या का हाल क्या हुआ। हमने कहा सब परफेक्ट थे, कोई को भी कुछ नहीं हुआ, एक भी हड्डी किसी की टूटी नहीं। तो ये क्या है, दुआएं जो है कैसे मदद करती है और कैसे। और फिर आधे घंटे के बाद हम चीफ मिनिस्टर को जाकर के मिले, उसको बताया नहीं कि इतना बड़ा एक्सीडेंट से हम होकर के आए, लेकिन कहने का भावार्थ ये कि एक खरोच तक नहीं आए, 5 बार गुलट खाए और एक खरोच तक नहीं आए। तो यही तो दुआओं की शक्ति है कि सोचो आप कितनी, वो 120 पर डब्बा चल रहा था और जो उल्टा वो, तो कितना राउंड लगाया होगा और जाकर के खड्डे में गिरा। वो तो गाड़ी तो गई, स्क्रैप में ही गई, उसका तो बिल्कुल ये नहीं, उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी अगर 5ों में से एक को भी एक खरोच तक न आए तो उसको क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ा चमत्कार, नहीं तो क्या कहेंगे। हाँ, ड्राइवर तो पहला बेचारा निकल करके मदद करने लगा, सब करने लगा, क्योंकि वो तो बड़ा गिल्टी फीलिंग करने लगा कि मैंने, मेरे से क्या हो गया। लेकिन फिर उसको कहा तुम चिंता नहीं करो, टेंशन में नहीं, सब ठीक ठाक है, ये देख लो पहले, हाँ गाड़ी तो दूसरी आ जाएगी, इंश्योरेंस भी है, सब है, हो जाएगा, लेकिन तुम चिंता नहीं करो। कहने का उसको हल्का करना जरूरी था, वो बहुत भारी हो गया एकदम अंदर। कहा कोई बात नहीं। कहने का भावार्थ ये कि बाबा की मदद, और बाबा की मदद भी किनको मिलती है, जिन पर परमात्मा दुआएं हैं। तो अंतिम समय तो जो घात आनी थी वो आई है ना, होनी थी उसको कोई नहीं टाल सकता है, होनी हुई, लेकिन दुआएं कवच बन जाती है। जब किसी को वो ताकत नहीं खरोच तक लगा सके, है ना, आप सोचो, नहीं तो डब्बा कैसा पिचक गया, तो वो लोहा लग सकता था, किसी को कुछ भी लग सकता, लेकिन किसी को एक खरोच तक ही नहीं आई, कितनी बड़ी बात है कि नहीं। ये दुआ है। तो अंतिम समय में जो पेपर आएंगे एक साथ में, और उन पेपरों से बाहर निकलना, तो ये दुआएं बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति। Peace.